Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह सिद्धार्थ कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
प्राची नमस्कार गुड इवनिंग अर्जुन
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड लोअर सेंसेक्स ड्रॉप्स 161 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 23,650 इंडिया एंड द यूएई एग्री टू लॉन्च न्यू इनिशिएटिव्स टू प्रमोट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज
घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट सेंसेक्स लगभग 161 अंक फिसला निफ्टी 23,650 के नीचे बंद हुआ भारत और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पर सहमत हुए और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े
And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं आइए अब जान लें कि आज कारोबारी सत्र कैसा रहा देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट आई उतार चढ़ाव भरे सत्र के दौरान तेजड़ियों और मंदड़ियों में कांटे की टक्कर देखने को मिली सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया विस्तृत शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई मिड कैप 100 में लगभग 0.5% की गिरावट आई जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई इससे पहले बाजार धीमी बढ़त के साथ खुले लेकिन सत्र के अधिकांश समय तक सूचकांक सकारात्मक दायरे में कारोबार करते रहे हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण कारोबार के अंतिम घंटे में दोनों ही सूचकांकों ने अपनी बढ़त गंवा दी
Benchmark domestic equity indices reversed earlier gains and ended around 0.2% down in volatile trade today. Sensex fell by 161 points to close at 75,238, while Nifty dropped 246 points to settle at 23,644. The broader market on the NSE also ended lower. The mid-cap 100 dipped over 0.4%, while the small-cap 100 lost 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note but managed to trade in positive territory for most of the session. However, both stock market indices trimmed their early gains in the final hour of trade amid profit booking at higher levels and a rise in crude oil prices.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा स्टील इटर्नल और रिलायंस तीनों ही में लगभग 2% की गिरावट आई वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्फोसिस और टेक महिंद्रा दोनों ही में 2% से अधिक का उछाल आया उधर पावर ग्रिड के शेयरों में 1.3% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई
In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 25 sectors ended in negative territory. Among the top losers, metals shed 2%, realty lost over 1.8% and PSU banks as well as oil and gas dropped 1.8%. In the top gainers, IT rose over 1%, focus IT climbed 1% and services added more than 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, 1,705 companies advanced and 169 companies remained unchanged.
और अब बात रुपए की। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 99.15 पर चल रहा था। सिद्धार्थ, कारोबार का ये जो हफ्ता है उसमें आज आखिरी दिन है और हमने देखा इस पूरे ही हफ्ते में लगभग 4% बाजार गिरे और आज हमने देखा 0.2% का गिरावट देखी। ऐसे में आज के कारकों को आप कैसा देखते हैं, आप क्या मानते हैं कि किस वजह से बाजार में ऐसी गिरावट हमें देखने को मिल रही है?
नहीं देखिए प्राची, जहां तक बाजार की बात है, मुझे लगता है जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुई है तो बाजार पे कहीं ना कहीं उसके जो इम्पैक्ट है, जो उसके इफेक्ट है, वो जो है कहीं ना कहीं मार्केट को, पूरे मार्केट सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से ग्रिप्ड है। वेस्ट एशिया का जो भी इम्पैक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था पे, खासकर जो क्रूड ऑयल प्राइजेस जो महंगी हुई, क्रूड ऑयल के जो दाम है जो आप तकरीबन आज भी $109 प्रति बैरल है, और जब वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू हुई थी, जब ये ईरान और अमेरिका का युद्ध जिसमें इसराइल भी शामिल है अमेरिका की तरफ के साथ साथ, तो तब तकरीबन $60-70 पर बैरल थी। तो अब कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक कंटिन्यूस इतने हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस का, और जब और भारत जैसा देश जो कि तकरीबन अपनी 85-90% जो मांग है, जो तेल की आपूर्ति है, वो इम्पोर्ट करता है, वेस्ट एशिया से ही ज़्यादातर इम्पोर्ट होता था अभी तक, अब हमने डाइवर्सिफाई किया है जब से ये क्राइसिस आई है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महंगाई पे दिखेगा। अब दिख रहा है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जो कल डेटा आया WPI पे काफ़ी जो है उसमें बढ़ोतरी दिखी, तकरीबन 42-month हाई था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ऐसी आशा की जा रही है। CPI भी ऑलमोस्ट 3.5 हो चुका है अप्रैल का जो डेटा आया, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट, महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन एक्टिविटी दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो फिस्कल जो मैथ्स है वो भी कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर है, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चुनौतियां जो अब अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि ये जब जितना लंबा खींचेगा उतना निगेटिव्स अर्थव्यवस्था के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं शायद उस सब का इम्पैक्ट बाजार पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाजार की जो प्रेजेंट कंडीशन है।
आज हमने जैसा देखा कि बाजार फ्लैट नोट पर खुले, फिर थोड़ा सा उछाल आया, फिर थोड़ा सा बाजार गिरा, और ये इस तरीके के हमने काफी बार उतार चढ़ाव देखने को हमें मिला बाजार में, और उस पर हम बात भी कर रहे थे पीछे शो से पहले। तो इसको आप कैसे रेखांकित करते हैं आज की ट्रैजेक्टरी को बेसिकली?
नहीं देखिए, शायद कहीं ना कहीं बाजार मतलब किसी ना किसी इज लुकिंग फॉर ए रे ऑफ होप, और एक आशा लग रहा था कि जब ट्रंप साहब अपनी चीन की यात्रा शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि वो जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वो चाइना जा रहे हैं, और अब चाइना चीन की भी मदद मांगेंगे वेस्ट एशिया क्राइसिस को, ईरान को ये कन्विंस करने के लिए कि जो है वो समझौता करे और इस जो युद्ध है इसका अंत हो। लेकिन जो जिस तरह की उनकी यात्रा रही, ऐसा कोई बहुत स्पष्ट उसमें से संकेत निकल के नहीं आए कि चीन ने कोई उन्हें स्पष्ट भरोसा दिलाया हो कि वो भी ईरान से बात करेगा और कुछ इस तरह की पॉजिटिव बातें निकल के आएंगी। और ना केवल वो, साथ साथ चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको लेके भी बहुत ज़्यादा आशा लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसे कोई ठोस जो है परिणाम देखने को मिले नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका भी एक बड़ा असर था। फिर आज क्रूड ऑयल, चूंकि ये अनिश्चितता बनी हुई है, ये दिख रहा है कि आगे स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं दिख रही, लग रहा है कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस आने वाले समय में भी चलेगी, तो और अमेरिका ने फिर से धमकी दी है ईरान को कि अगर अब वो नहीं माना तो उसका पेशेंस जो है खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों का कहीं ना कहीं ये है। प्लस अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी इसका असर असर दिख रहा है। अगर आप देखेंगे सब जगह इन्फ्लेशन का या महंगाई का जो फियर है या जिन कह लें उसको, वो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है, और सारे जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इस तरफ अभी तो अपने रेट्स होल्ड किए हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया जहां पे रेट्स उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक स्थिति लग रही थी कि सब जगह मतलब इंटरेस्ट रेट्स घटाने की बात हो रही थी इकोनॉमी, तो वो कहीं ना कहीं फियर भी बाजार में दिख रहा है।
सिद्धार्थ, वी हैव सीन दैट फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम ईरान, रशिया एंड ब्राजील हैव बीन इनवाइटेड टू इंडिया इन ऑर्डर फॉर अस टू डिस्कस अबाउट एनर्जी security because the risk of inflation is quite high, led by oil and gas. But if you go back to the equity markets, the DIIs were the net sellers today to the tune of 1,958 crore rupees. And the FIIs were the net buyers in the market. How did that happen? Why this reversal? Because typically, the short covering has always been by the domestic institutional investors. Our fundamentals are right. Fourth quarterly earnings have been quite positive. How is it that the DIIs are the net sellers today?
So, Arjun, I would say I think the important part of your question is that FIIs are net buyers. So, and DIIs, you saying the domestic institutional investors obviously are selling maybe because of profit booking. But I would say the important point or the important takeaway from your question is that that FIIs are net buyers today. And I think it is directly linked to a report which came in yesterday that the Indian government on the advice or on the suggestion of the central bank, the Reserve Bank of India, is likely to completely waive the tax on interest payments on the debt part of the which foreign institutional investors pay on government bonds. So I think that is the kind of hope which is building in, because this has been a big demand from the foreign institutional investors that a withholding tax of almost 20% is imposed on their whatever debt the investments made into the debt, Indian debt market, especially the government bonds. So I think that is giving a ray of hope to the foreign institutional investors that Indian government is ready to take a look at cutting tax on the government debt, on the government bonds. And I think that is also bringing that them back to the Indian markets.
We saw profit booking even in Bank Nifty today. It went down by almost 1%. 419 points, the Bank Nifty fell ahead of the central bank meeting on interest rates. So how do you see the linkage to inflation, wholesale price index, CPI? How do you see a decision being taken and impacting the loan growth in the economy and, for that matter, the income, net interest income of banks?
I think for banks, if you look at the current financial, the financial year we just ended, 25-26. So I think the Indian banks, both public sector as well as private banks, they registered record profits. I think so that would be one of the reasons with investors making taking profits. And obviously, as you said, the outlook for interest rates obviously looks that there is a chance that interest rates or the central bank may change its stance from neutral this time.
Repo rate 5.25%.
Yeah, so basically, because of the inflation fears, they may change their stance from neutral. So there is a chance that interest rates not immediately, but yes, in one or two next policies, there may be a hike in interest rates. So obviously, there will be pressure on credit of the banks. So, and obviously, if economy slows down, obviously, there will be pressure on the bank's performance in the current financial year. So obviously that would be one of the negative aspects for the banks, and that could be also putting pressure on their outlook for the banks.
Let's have a look at the Asian market story now.
आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 6% से अधिक गिरा. टेक के शेयरों में भारी गिरावट के कारण ये नए रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गया. जापान का निकेई 2%, हांगकांग का हैंगसैंग 1.5% से अधिक, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% से अधिक फिसला. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें श्रोताओं, तो आज यहां भी मंदी देखने को मिली. जर्मनी का डैक्स 2%, लंदन का फुटसी 1.7% और फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 1.4% नीचे कारोबार करता नजर आया.
मूविंग ऑन टू द यूएस स्टॉक मार्केट, द बेंचमार्क S&P 500 एंड द टेक हेवी नैसडैक कंपोजिट सेट न्यू क्लोजिंग रिकॉर्ड हाईज यस्टरडे, सपोर्टेड बाय गेन्स इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स. नैसडैक कंपोजिट इंडेक्स सर्ज नियरली 0.9% टू 26,635. S&P 500 क्लाइम्ड ऑलमोस्ट 0.8% टू 7,501. And the Dow Jones Industrial Average rose over 0.7% to retake the 50,000 mark. Investors were also watching for developments from Beijing, where U.S. President Donald Trump was engaged in a high-stakes meeting with his Chinese counterpart Xi Jinping. How linked is this U.S. visit to China to what's happening in the tech sector? Because you can find stocks which have gone up as much as 17%. How does it happen in a U.S. stock market where typically capital gains are not that high as compared to emerging markets?
I think the euphoria in the U.S. market, especially in the technology stocks, is basically emanating from the interest, huge interest in artificial intelligence. And also, if you look at the earnings of the AI companies, I think so that they've been very good. And so I think that is basically which is giving this kind of high returns in the U.S. market, especially in the technology stocks. So I think it is the euphoria of the artificial intelligence. And as far as your question, how it is linked to the President Trump's visit to China, I think there was a huge expectation about China increasing the supplies of chips from the American companies, artificial intelligence chips which are used in AI. So I think there was a huge expectation, though we haven't heard still anything concrete on that. But yes, but I think obviously US has the technology, and obviously China in terms of rare earth, which is used in these chips as raw material, rare earth. So I think both the sides have not much space then to collaborate and work together.
Well, Elon Musk was also part of the delegation to China along with
also Trump. Nevada chief. Yeah, most of the technology. Yeah,
absolutely. And clearly the tech sector has responded with gains in the capital market today in the equity sector. My question is that the Strait of Hormuz is what has been another issue. And U.S. is seeking support from China. It seems that it should not be under the exclusive control of Iran. And China has come out with a statement as well. Just tell us something about that.
No, basically, Arjun, China has also supported that, yes, Strait of Hormuz should be open and accessible to all. And there shouldn't be exclusive control of any one nation or country, or there should be a free flow of trade or vessels through Strait of Hormuz, which has been obviously obstructed for last almost now more close to 2.5 months. So I think they favored, but as far as the US basically interest in pushing China to convince Iran, I don't think we have heard anything concrete on that side. So that needs to be seen. Though just before the program, one of the statements from the U.S. president was saying that China has assured them they won't be supplying further arms to Iran. But it needs to be seen what the finer prints once we see the details.
In more news, Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. The remarks came after high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi during the first stop of his five-nation tour. Prime Minister said he looks forward to deepening cooperation with the United Arab Emirates in key sectors including energy, investment and supply chains. Both leaders also agreed to launch new initiatives aimed at strengthening the comprehensive energy partnership between the two countries. We have a report from our correspondent.
The talks yielded a wide range of agreements on energy. India's Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
Concluding his United Arab Emirates visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to the Netherlands. Tell us something about how strategic this partnership is, apart from the 30 million barrels of crude oil that is going to be imported and natural gas as well from the Middle East. Infrastructure, energy infrastructure is something that has been discussed greatly now, linked to the Strait of Hormuz. And that is clearly natural, but there are man-made transit points as well, like the Panama Canal, for instance, the Suez Canal. But there are also other natural causeways through which transportation links are made. How do you see infrastructure a key point right now?
See, as far as the visit of Indian Prime Minister to UAE, it's, I think, one of UAE is emerging as one of our very strategic partners, not only in energy, but also defense, finance, infrastructure, the way, and the huge investments. And both the countries, I think, we have set a target of almost taking bilateral trade to 200 billion rupees by 2032. And the fact that UAE has also exit the OPEC, so which frees them to sell their energy products to anyone they decide to. And the equation our Prime Minister shares with the UAE President, I think it's also a personal equation, with, because if you could recall, a few months back, we saw UAE President visiting India on a one-day visit also. And there were a lot of strategic engagements even at that point in time, which I think have seen light of the day today, like in terms of our assured supply of LPG, then also pushing up our strategic reserves, also investments in the field of infrastructure, finance. So I think it's a well-rounded relationship, which is now bearing fruits.
आगे बढ़ते हैं श्रोताओं. भारत के माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है. ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है. वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में ये मजबूत प्रदर्शन व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती मजबूती और भूमिका को दर्शाता है. देश के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2026 में 34.66% बढ़कर 9 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया. वहीं गैर पेट्रोलियम निर्यात अप्रैल 2026 में 33 अरब 97 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया. ये निरंतर वृद्धि भारत के विविध निर्यात उत्पादों की मजबूती और भारतीय विनिर्माण और मूल्यवर्धित उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांगों को उजागर करती है. वैश्विक मांग में मजबूती के चलते अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात 40.31% बढ़कर 5 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है. सिद्धार्थ, इतने मुश्किल समय में ये आंकड़े हमारे लिए और हमारी अर्थव्यवस्था में जिनका विश्वास है उनके लिए कितने मतलब एक खुश करने वाली बात है कि ये बेहतरीन आंकड़े निकल करके आए हैं.
आपने बिल्कुल ठीक कहा प्राची, बहुत ही उत्साहवर्धक है. बिकॉज अगर आप जब से देखेंगे, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कार्यभार संभाला है, तब से कुछ ना कुछ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उन्होंने उथल पुथल के रखा. जब वो आए तो टैरिफ का जो है उन्होंने एक जो अनलीश किया पूरी दुनिया के ऊपर, टैरिफ्स लगाए, हाई टैरिफ्स, उसमें हिंदुस्तान भी था. और पिछले 1.5 साल से हमारे एक्सपोर्ट्स पूरी तरह से डिस्टर्ब थे, लेकिन भारत सरकार ने उससे निपटने के लिए, मैं कहूँगा, हमने जो है तमाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए. जो लास्ट था अभी न्यूजीलैंड के साथ हमने कंक्लूड किया, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूएई के साथ हमारे जो है रिश्ते या बायलैटरल ट्रेड यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इस तरह से हमने जो है एफटीएस किए. बिकॉज हमको अपने एक्सपोर्टर्स को जो है उस तरह का प्रोटेक्शन देना था, नई मार्केट ढूंढनी थी और नए प्रोडक्ट्स हम और जो है दुनिया को एक्सपोर्ट कर पाएं. इसके साथ साथ जो हमने अपने तौर पे, सरकार ने अपनी जो पॉलिसीज के तौर पे कैसे एक्सपोर्टर्स को जो है आसानी से और सस्ता क्रेडिट अवेलेबल कराया, चाहे तरह तरह की स्कीम्स, जैसे एक रोड टैप करके स्कीम है जिसमें जो टैक्सेस वो देते हैं जब वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लोकल टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस हैं, तो कैसे वो उनकी जो एक्सपोर्ट की जो कीमत है जो प्रोडक्ट की उसमें शामिल ना हो, उसको रिइंबर्स किया जाए. इस तरह की स्कीम्स कैसे के प्रोडक्ट्स को और आकर्षक बनाया जाए, तो तरह तरह के स्टेप्स पिछले 1.5 साल में सरकार ने लिए. साथ साथ जो जब से सरकार आई है तब से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स की जो स्कीम मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज हम ऑलमोस्ट मोबाइल में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं. तो ये सब मुझे लगता है कारण है जो हम देख रहे हैं कि आज इस साल के शुरू के पहले महीने में हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 14% की बढ़त दिख रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में.
जी,
in more news, India's forex reserves rose by $6.2 billion, standing at $696 billion for the week ending May 8. According to RBI, gold reserves jumped by $5.6 billion to $120 billion. Foreign currency assets, the largest component of the reserves, also advanced by $562 million to $552 billion during the week. Meanwhile, special drawing rights, SDRs, increased by $84 million to $18.87 billion. Country's reserve position with the IMF also rose by $12 million to $4.87 billion. The country's unemployment rate for persons aged 15 years and above remained broadly stable at 5.2% in April, slightly up from 5.1% in March this year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation, the monthly labor force and unemployment data, the rural unemployment rate advanced to 4.6% last month as compared to 4.3% in March. In contrast, urban unemployment edged down to 6.6% in April from 6.8% in March. The overall unemployment rate among female aged 15 years and above rose slightly to 5.4%, while urban female unemployment rate declined to 8.5% last month at the lowest level recorded since April 2025. The overall male unemployment rate also witnessed marginal uptick and stood at 5.1%. And let's have a look now at the petroleum market.
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है. इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपए और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपए हो गई है. इस बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है.
Global crude oil prices rose today amid lingering geopolitical uncertainties. Brent crude was trading over 2.4% up at $108.30 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 2.9% up at $104.14 per barrel when reports last came in. With the uptick in inflation in India, and for that matter, the producer price index in the US, do you see the geopolitical uncertainties becoming a certainty in the near future? We have the BRICS foreign ministers come in here. How do you see the crude oil market playing out? Because austerity measures are also being announced. What is your prediction?
See, Arjun, for crude oil market, I think the answer is the West Asia crisis. As soon as it is resolved, I think it will immediately again go below 100. And there is if you look at the whatever the opinion of the experts, most are of the opinion that there is obviously slowdown in global growth and there are huge surpluses of crude. So if the West Asia is resolved, we should see the prices coming down fast. But yes, the damage or this kind of almost 75 days of high crude oil prices have had negative impacts on economies all across the globe. So there is fear of inflation, economy slowing down, Europe, US, and which includes us also.
Let's have a look at the bullion market. Now, in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 1.6% down at 1,59,990 rupees per 10 grams, while silver was trading nearly 5.6% lower at 2,75,510 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona 1.6% girkar 1,59,355 rupees prati 10 gram par tha aur July anubandh wali chandi 5.5% ghatkar 2,75,174 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Siddharth, sone aur chandi ki keemton mein, especially sone ki keemton mein, kya aap kisi tarike ki correction ko anticipate kar rahe hain?
Nahi, correction to nahi, mujhe lagta hai thoda bahut और नीचे आ सकती है आने वाले नियर टर्म में, बट ज्यादा बदलाव दिखता नहीं है. जो अभी ट्रेंड है, नियर टर्म ट्रेंड यही है कि प्राइसेस आर स्टेबल एट करंट लेवल्स.
बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए, मेरे और अर्जुन के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए.
आप दोनों का धन्यवाद.
And now the closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices end lower. Sensex drops 161 points. Nifty settles below 23,650. India and the United Arab Emirates agree to launch new initiatives to promote a comprehensive energy partnership. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.